पाहुड़ लेक्चर नंबर 1 3 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिया
हेलो 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 हेलो
कुंदाचार्य भगवान द्वारा लिखित जो अष्टपाहुड़ है उस अष्टपाहुड़ के दर्शन पाहुड़ की हम गाथा नंबर 2 के ऊपर के स्वामी जी के प्रवचन देख रहे थे। वहाँ जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके 8 प्रकार के अंग होते हैं, उसमें से हमने 6 अंग को देखा है, निकांक्षित, निशंकित, निर्विचिकित्सा आदि स्थितिकरण तक हम आए। अब उसके बाद यहाँ हम 7वां जो नंबर है वात्सल्य अंग, उसको हम पेज नंबर 78 पर आखिर का पैराग्राफ में देखेंगे और वहाँ से शुरू करेंगे। देखो वात्सल्य अंग, पहले में पहले क्या कहते हैं, आत्मा ज्ञानानंद शुद्ध स्वभाव ही है, अंतर अनुभव सहित उसकी निर्विकल्प प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी प्रतीतिवंत समकीति को पंच परमेष्ठी जिन प्रतिमा चैत्यालय आदि के प्रति प्रेम होता है। किसकी बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की, उनके प्रति उल्लास भक्ति बहुमान होता है तथा धर्म के साधक चतुर्विध संघ के प्रति, ये चतुर्विध यानी 4 प्रकार के चतुर्विधि संघ, तो ये चतुर्विधि संघ में कौन आता है जानते हैं आप लोग, आप जानते हैं, हाँ बोलो, श्रावक, आरिका, हाँ 3 हो गए, चतुर्विध चाहिए आप, हाँ बोलो, देखो देखो मुनि हो गए, फिर वो अलग शुल्लक वाले जो होते हैं वे भी उनको लेना अलग, हाँ आरिका और श्रावक, हाँ
श्रावक में आ जाएगी ना अलग शुल्लक,
श्रावक में
मुनि आरिका श्रावक श्राविका,
श्रावक श्राविकाओं को भी लेना है,
हाँ ना, और मुनियों में जो चतुर्विध करते वो ऋषि अति मुनि अनगार वगैरह ऐसे करते मुनियों में 4, हाँ, परंतु ये जब साधारण चतुर्विध संघ कहते हैं तो मुनि आरिका श्रावक श्राविका,
अच्छा मुनि आरिका श्रावक और श्राविका इन 4 को लेना, आपने वही बताया था,
हाँ
यानी आपका कहना है कि जो पंचम गुणस्थान वर्ती अलग शुल्लक है उनको श्रावक में ही लेना है और चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक को ही लेना है, श्राविका चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, आरिका पंचम गुणस्थान वर्ती,
यह गुणस्थानों की अपेक्षा नहीं, साधारण सभी श्रावक, श्रावक यानी उनका गुणस्थान कौन सा है वो नहीं, या तो रेगुलर जो सारे जैनी है उसको हम श्रावक में ले लेंगे, श्राविका सारी स्त्रियां, और जो मुनि संघ में है वो सारे मुनि, और आरिकाओं में जो उनकी पदवी नीचे ऊपर होगी उसकी कुछ बात नहीं है,
अच्छा, तथा धर्म के साधक चतुर्विध संघ के प्रति हृदय से बहु प्रीति होती है, ऐसा वात्सल्य समकीति के होता है और सच्चे शास्त्र के प्रति बहुमान होता है, यानी उनके सच्चे देवगुरु शास्त्र ये पंचपरमेश्वरी में आ गए ना, साथ में जिन प्रतिमा है, चैत्यालय है और ये चार प्रकार के जो चतुर्विध संघ है उनके प्रति भी, इनके और शास्त्र के प्रति भी उनको वात्सल्य रहता है। आर्य का पंचम गुणस्थान वर्ग्य, जैसे गाय के बछड़े के प्रति प्रीति होती है वैसे ही धर्मी को अन्य धर्मात्मा, धर्मात्मा हुआ है, धर्मात्माओं के प्रति तथा देवगुरु देवशास्त्र गुरु के प्रति अतिशय वात्सल्य होता है। उनके प्रति वह दासपने वर्तते हैं, यानी उनसे अपने को सुपीरियर कभी नहीं मानेंगे, दासपने से वर्तते हैं, यानी वो उनको बिल्कुल अरिहंत सिद्ध तथा उनकी प्रतिमा चैताले चतुर्विध संघ आदि के प्रति धर्मात्मा को दासपना होता है। जैसे नौकर स्वामी के प्रति दासपने वर्तता है वैसे ही देवशास्त्र गुरु आदि के प्रति धर्मात्मा दासपने प्रवर्तता है, बहुमान करता है, ऐसा धर्म का वात्सल्य समकीति के होता है। जैसे गाय को अपने बछड़े के प्रति सहज ही प्रेम होता है वैसे ही धर्मात्मा को पंच परमेष्ठी तथा साधर्मी के प्रति अंतर प्रेम होता है और धर्म स्थान पर या साधर्मी आदि पर उपसर्ग आदि आवे तो अपनी शक्ति न छुपाते हुए सर्वशक्ति से उसे दूर करता है। यानी क्या कहना चाहते हैं, उसको अपनी शक्ति यानी उससे जितना हो सके वो सारे प्रयत्नों के साथ वो करेगा, ये क्या कहना चाहते हैं? देखो जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम क्या करेंगे, अरे रे रे एक्सीडेंट हो गया, बेचारा गिर गया, शायद उसका पैर टूट गया, ऐसा देखते हैं, समझ भी रहे लेकिन गपचुप वहां से निकल जाएंगे। हमारे में शक्ति ऐसी है कि हम उसको उठा के टैक्सी में डाल के कहीं हॉस्पिटल में एडमिट करें, लेकिन हम नहीं करते, जो भी कारण होगा, कौन झंझट में पड़ता है, कौन है, क्या है मालूम, वगैरह वगैरह। लेकिन मान लो, देखो शास्त्र में एक ऐसा कथन है, एक रान डुक्कर बोलते हैं उसको, यानी वाइल्ड पिग, और एक मुनिराज वहाँ बैठे थे, इतने में वहाँ से सिंह आता है और मुनि के ऊपर हमला करना चाहता है, इतने में वो तो जो पीग रहता है ना उसकी तो सिंह के सामने कोई हैसियत नहीं होती है, लेकिन उसको उस मुनि के प्रति प्रेम है इसलिए उसके साथ वो लड़ाई करता है, दोनों ही मर जाते हैं, लेकिन अपनी सर्वशक्ति के साथ वो उसके साथ लड़ता है। ये सर्वशक्ति की बात बतानी है। सर्वशक्ति से उसे दूर करता है, उपसर्ग आदि आवे तो अपने शक्ति को न छुपाते हुए, इस तरह ये बात बताना चाहिए। भगवान की प्रतिमा का निषेध, उसका अभिनय करने वालों को तो वात्सल्य नहीं है, जिसको देवगुरु धर्म का आदर नहीं वह तो मिथ्या दृष्टि है। समकीति धर्मात्मा तो भगवान के प्रति, भगवान के प्रतिमा के प्रति दासपने प्रवर्तता है। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, देखो बनारसी दास जी ने ऐसा लिखा है, जिन प्रतिमा है जिन सारखी, यानी जिन सारखी यानी क्या, जो जिनेन्द्र भगवान साक्षात विराजमान है कहाँ, समोशरण में, वहाँ वैसे होते हैं वैसे ही यह जो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा हम मंदिर जी में जो स्थापित करते हैं बिल्कुल साक्षात हूबहू वहाँ का ही यहाँ ये स्थापना है उनकी। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हम जैसे साक्षात भगवान हमारे सामने हो तो हम उनके प्रति कैसे दासत्व करेंगे वैसे ही मूर्ति के सामने भी अपना ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए। मुझे बोलने में तो कोई संकोच नहीं है, लेकिन असलियत बात है, देवलाली में हमने ऐसा देखा, उस व्यक्ति का नाम भी मैं जानता हूँ, तो वो क्या करें जो ऊपर शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है, पंचधातु की बनी है ना, उसके ऐसे चबूतरे पे रखी है वो चौकोनी, और अंदर मखर में वो बैठे हैं भगवान, उसके बाहर ऊपर जाके बिल्कुल ऐसा उनके सामने जाके वहाँ ध्यान करें, फिर हो गया कि वो भगवान के पैर को पकड़े, उनके हाथ ऐसे हैं, आपको भले उनके प्रति आदर हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समोचरण में कोई जाके हाथ लगावे क्या भगवान को, ताकत है किसकी। और यही बात इस बार मैंने एक व्यक्ति से की, वो भी मैं जानता हूँ कौन है, उनको मैंने कहा कि साहब मैंने माफ कर जो, देखो उसके उसको भी कहा था मैंने, इनको भी कहा था, तो हमें तो अत्यारे दीक्षित थया छे, दीक्षित यानी अभी अभी हम दिगंबर के इसमें आए हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है, आपने बताया बहुत मेहरबानी मुझे। और वो व्यक्ति ऐसी है कि रोजाए 10-5 लोग वहाँ जो पूजन करते हैं उन पूजन में आने वाली है, वो भी ऐसे ही करें, वहाँ 3-2 मूर्ति बड़ी बड़ी है, सबके पैर ऐसा करें, ऐसा 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 करें, और फिर वो हाथ रखे तो उसके, मैंने कहा ऐसा नहीं करना, मेरा क्या जाता है, लेकिन क्या मालूम मुझे अच्छा लगा और मैंने दोनों को भी बताया। देखो यहाँ क्या कहते हैं, भगवान और भगवान की प्रतिमा के प्रति, दोनों के प्रति आदर चाहिए, क्योंकि जैसे साक्षात समोसरण में भगवान विराजमान है वैसे उनकी हमने स्थापना की है, ख्याल में। लेकिन हमें आदर यानी हम ऐसा समझते कि हमने कुछ ऐसा दिखाया तो हमारे बहुत उनके प्रति आदर है, प्रेम है, राग है, ये राग होता है वह शोबाजी नहीं है, मेरा ऐसा प्रामाणिक मत है, गलत हो तो बता देना हो डॉक्टर कि मेरी कोई गलती होती हो उसमें। हाँ जी, वो सब जगह ऐसा है, क्या करें अभी, किसको किसको समझाएं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात ऐसी है, दूसरी साथ साथ में ये भी बात ध्यान रखना, यहाँ जो मतलब फोटोग्राफ्स लगे हैं उनको भी नमन नहीं करना चाहिए, ये सामने बाहुबली की एक मूर्ति रखी है, क्योंकि ये प्रतिष्ठित नहीं है। हाँ सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों, वो स्थापित है क्या, कैलेंडर है, कल फट जावे, 2009 आ गया, उसको उठा के तुमने रद्दी में डाल दिया, तुम क्या करोगे, अभी ये फोटोग्राफ है, फट जाए, खराब हो जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, हाथ जोड़ना क्या, तुम तो नमन करना जैसे ही हो गया ना भाई, बिल्कुल मिथ्यात्व का दोष आए, क्योंकि आप कहो तो ग्रहित भी कह सकूंगा, क्योंकि तुमने देव के स्वरूप को नहीं जाना। देखो हमारे पास तो अभी भगवान तो मौजूद है नहीं, ख्याल में है ना, तो हम क्या करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते, स्थापना करते यानी उसमें हमने 5 कल्याण करते हुए उनकी हूबहू वैसे ही हमने स्थापना की है, और वो तदाकार स्थापना है, ये अतदाकार है, ठीक है जो भी है, लेकिन इतना तो विवेक हमारे में होना ही चाहिए, ख्याल में आया। ये तो भाई अभी इतने दिन के बाद मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई आपको सुधारने का या आपको कोई समझाने का ऐसा ही भाव आ गया कि आप अभी तो समझने लायक हो गए हो, आप सब लोग करते हैं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ख्याल में आए ना। अभी वैसे महाराष्ट्र में ऐसी भी पद्धति हैं, स्त्रियां भी प्रक्षाला आदि करती हैं, वह भी योग्य नहीं है, क्योंकि अभी लौकिक में भी कोई एकाध व्यक्ति ब्रह्मचारी होवे तो स्त्री उसके साथ जाके बैठेगी क्या? उसको हाथ लगाएगी ना? और वो तो जिन्होंने महाब्रह्मचर्य व्रत लेके अरिहंत अवस्था प्राप्त की है, उनको जाके हाथ लगाए? यानी देव का स्वरूप नहीं जाना है तुम्हें, ये बोलने जाओ तो लोग खाने को उठते भाई, मतलब मारा मारी भी करेंगे। वो नहीं, अभी वो मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ, लेकिन स्वयं करेंगी वो। शुरू में ऐसा करेंगे, पहली बार जब दीक्षा होते हैं। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ये कौन से थे वो मुझे मालूम नहीं है, वो आप जरा देख के। मैंने पुरुष, सुनो सुनो, मैं ये कहूंगा पुरुष को बाल निकालते हुए मैंने भी देखे हैं, यानी एक पुरुष है वो दीक्षा ले रहा है तो उसके सीनियर कोई जो मुनि है वो उसको पहले सिखाते हैं किस तरह होना है। और ये स्पर्श, यानी ये स्पर्श की जो बात है ना, ये खाली क्रिया मत देखना, उसके पीछे के भाव भी समझना, वो मेन है। हाँ, करना नहीं चाहिए। आप जो अभी देखो टीवी में दिखाया होगा तो दिगंबर का शायद ही कोई दिखाता है, अच्छा मुझे मालूम नहीं, उसके बारे में मैं विशेष नहीं जानता हूँ। ठीक है, जो भी है, मैं भी उसके बारे में विशेष नहीं, आप जानती हैं। हाँ, वो मैं भी नहीं जानता, आपको कुछ पता है? हाँ ठीक है, अभी वो किसी जानकार व्यक्ति से। हाँ वही तो, ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये दिगंबरों का शायद आपने देखा है कि नहीं, इसके बारे में आप ही नहीं जानती हैं।
चरणानियोग के ग्रंथों में जो बात आती है ना, वहां से पढ़कर निर्णय करना चाहिए।
देखो ये आचरण की बात चलती है ना तो सब सजग हो जाते हैं, तत्वों की बात आ गई ना। अच्छा, अभी मुझे मजा आती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अपने ही यहाँ, अब मैं भूल गया कौन, एक व्यक्ति, एक स्त्री आती थी यहाँ पर, उसने मुझको एक फोटो लाके दी, पिक्चर पेपर में छपी हुई, मुनि महाराज इसमें बोल रहे, क्या नाम है, मोबाइल पे, बोली ऐसे तुम्हारे मुनि होते हैं। मैंने कहा हमारे थोड़ी है, जो है वो हमारे थोड़ी है उसके है हमारे यहाँ क्या करें। हाँ वो तो है मेरे पास, अभी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये कहना हूँ आचरण की बात होती है तो हर जीव अपने अपने अनुसार आचरण करे तो खोटा भी उसमें बात चल जाती है। चलो, क्या कहते हैं, भगवान की प्रतिमा का निषेध उनका अविनय करने वाले को तो वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य नहीं है इसका अर्थ क्या हुआ बापा, वो मिथ्या दृष्टि है, बराबर। जिसको देव देव गुरु धर्म का आदर नहीं वह तो मिथ्या दृष्टि है। समकीति धर्मात्मा तो भगवान के प्रति, भगवान के प्रतिमा के प्रति दासपने प्रवर्तता है। ये दासपने प्रवर्तता, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि उनको जाके छूना, उनको ये करना वो करना। अरे भाई वो जो कह रहे वो मानना, ये तेरा दासपन है, वो भूल जाता है। तथा चतुर्विध संग मुनि आरिका श्रावक श्राविका, आ गया बहन, आ गया ना, चलो अच्छा सीख लिया है। क्या कहते हैं, मुनि चतुर्विध संग यानी क्या होता है, मुनि आरिका श्रावक और श्राविका, मेरी गलती हो रही थी, सुधर गई। उसके प्रति सेवकपने दासपने बालकपने वर्तता है, ऐसा धर्म का वात्सल्य समकीति के होता है, उसको धर्मात्मा के प्रति, देवगुरु शास्त्र के प्रति विनय, बहुमान और प्रेम नहीं आता, वह तो मूढ़ स्वच्छंदी है। समकीति को धर्म और धर्म के निमित्तों, जिन प्रतिमा, चैतालय, जिन शास्त्र आदि के प्रति अत्यंत प्रीतिरू वात्सल्य होता है, ऐसा समिति का समकीति का सातवा वात्सल्य अंग है। मिथ्या दृष्टि मूढ़ है, उसको कुदेवादिक के प्रति प्रेम होता है, या धर्म की अपेक्षा भी विषय कषाय के निमित्तों के प्रति विशेष राग होता है, किंतु धर्मात्मा को तो देवगुरु शास्त्र के प्रति अतिशय प्रीति होती है, दासपना होता है। इस प्रकार उसकी दिशा बदल गई है। यहाँ क्या कह रहे हैं, दिशा बदलने के पहले दशा बदली जाए तो उसकी दशा खोटी होती है। क्या कहा है? दिशा, दिशा यानी दृष्टि बदलने के पहले, दृष्टि यानी श्रद्धा, समझन, दोनों लेना, उसके बिना हालत ही यानी दशा ही हमने बदली कर दी। गुरुदेव की भाषा में कहना हो तो लुगड़ा फेरव्या एटले काई नो थियो। तो क्या कह रहे, देखो यहाँ इस प्रकार उसकी दिशा बदल गई है। क्या हो गया, उसने वो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति बहुमान करता है सही रूप से, तथा तीर्थस्थान जहाँ भगवान जन्मे मोक्ष पधारे, ऐसे तीर्थस्थान जिन मंदिर शास्त्र आदि पर उपसर्ग आवे, तो वहाँ उनकी रक्षा का भाव धर्मात्मा को आता है। वीतरागी जिन प्रतिमा, जिन मंदिर या तीर्थस्थान आदि को कोई नष्ट करता हो तो अपनी शक्ति के अनुसार उसकी रक्षा का प्रयत्न करता है, वह अपनी शक्ति को छुपाता नहीं। इस प्रकार का धर्म प्रेम समकीति के होता है। किसी समय धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का प्रसंग ही बने तो समकीति को वैसा भाव भी आता है, वह अपनी शक्ति और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विवेक करके वर्तता है। यहाँ इतना बतलाना है कि धर्मी को धर्म के निमित्त तथा साधर्मी के प्रति अत्यंत प्रीति रूप वात्सल्य भाव होता है, उसको ऐसा धर्म का उल्लास आए बिना नहीं रहता। अन्य विकल्प आवे, विषयों के निमित्त में अपनी शक्ति से तन मन धन खर्चे और सच्चे देवगुरु धर्म के लिए ऐसा उत्साह न आवे तो ऐसा उत्साह भाव न आवे तो उसको
देखो ऐसा उत्साह भाव न आवे तो उसको वस्तुतः धर्म की प्रीति ही नहीं है, वह तो मिथ्या दृष्टि है। धर्मी को अंतर के समय दर्शन के साथ वात्सल्य का ऐसा भाव भी होता है। अब प्रभावना अंग, आठवां अंग उसका, आठवां गुण।
एक मिनट डॉक्टर, आपने जो बात पूछी ना, एक गुरु था, उसके पास दो जने गए, दोनों ही जवान लड़के थे 20-22 साल के, तो गुरु को कहा कि भाई हमें कोई आप व्रत दो या कोई ऐसा कि दोनों जाओ ब्रह्मचर्य पालन करो। हाँ सर, यानी क्या करने का, किसी भी स्त्री को हाथ नहीं लगाने का, जो आज्ञा निकल पड़े। जैसे आगे गए वहाँ एक नदी थी और उस नदी के अंदर एक बहुत सुंदर स्त्री क्रॉस करते करते उसमें डूबने लगी, वो चिल्लाने लगी, तो दोनों ही वहाँ किनारे पे खड़े थे, क्या करे क्या करे क्या करे, तो एक ने तुरंत छलांग मारी और उस स्त्री को उठाकर, उसको उस तरफ जाना था तो उसको पहल तीर पे छोड़ के वो वापस आ गया। तो दूसरा जो उसका मित्र था वो लगे, तूने क्या किया, ये क्या किया, तुरे को बोला था ना स्त्री को हाथ नहीं लगाने का, तूने तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का भंग कर दिया। तो मैंने कहा, अरे भाई मैं तो उस स्त्री को उस पार छोड़ के भी आया, अभी तेरे मन से वो स्त्री गई नहीं है, ख्याल में है? तो यानी उसके पीछे के जो भाव थे वहाँ उसको कंसीडर करना है, ये मैं आपको बताना है। अभी मैं उसके कोई सराहना नहीं कर रहा हूँ जो आपने पूछा, ये तो अंदर में ऐसे भाव हो तो बाहर में ऐसी क्रिया कोई होगी ही नहीं, ये मूल बात है। हाँ जी बोलो अभी आप।
प्रभावनांग अंतर में अपने ज्ञानानंद स्वरूप कारण परमात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का उद्योत यानी प्रकाशन, वह निश्चय से अपनी प्रभावना है। हम तो प्रभावना यानी बाहर में ही कुछ विशेष प्रसिद्धि करना उसको प्रभावना समझते हैं, परंतु प्रभावना प्रकृष्ट भावना, भावना यानी उस रूप होना एकाग्र होना उसको भावना कहते हैं। निश्चय से अपनी प्रभावना और शुभराग होने पर बाहर में सत्य धर्म की प्रभावना का भाव आवे, दान तप पूजा प्रतिष्ठा पंचकल्याण आदि विधानों से जैन धर्म की प्रभावना करे तथा अपनी शक्ति हो और ऐसा कोई प्रसंग आवे तो विद्या चमत्कार अतिशय आदि से भी जैन धर्म उद्योत करे, ऐसा प्रभावना अंग है। वहाँ अपना ज्ञान को छुपाना या अपने पास कुछ विशेष है तो उसको छुपाना ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल उसको लोग अधिक से अधिक समझे उसको यहाँ कहेंगे प्रभावना। इस प्रकार ये आठ अंग सम्यक दर्शन के हैं। जिसको ऐसे आठ अंग हो उसके ही सम्यक को जानना, जिसके आठ अंगों का ठिकाना नहीं वह तो मिथ्या दृष्टि ही है। ये सम्यक दृष्टि के चिन्हों की बात चल रही है। पहला चिन्ह कौन सा दिखा था याद है? नहीं, पहला चिन्ह पूछा मैं, पहला अंग नहीं पूछा मैंने। प्रधान चिन्ह, हाँ स्वानुभव कहा था उसको। स्वानुभव जो है उसको पहले में पहले प्रधान चिन्ह कहा, उसके बाद फिर वो प्रशम संवेग वगैरह अस्तिक्यता उसकी बात आई थी। अब यहाँ आठ अंगों की बात बता रहे। हाँ, इस प्रकार ये हमने देखा है आठ अंगों को सम्यक्त के बाह्य चिन्ह कहा जानना। प्रश्न, जो ये सम्यक्त के आठ चिन्ह कहे वैसे मिथ्या दृष्टि के भी देखने में आते हैं, तब सम्यक्त या मिथ्यात्व का निर्णय किस प्रकार हो सकता है? जो अन्य भी जैन श्रावक जिसको हम कहेंगे श्रावक यानी प्रथमान योग की अपेक्षा श्रावक जैन कुल में है तो उनके भी ऐसी बातें देखने में आती है, कोई भला है तो वो भी ये बातों को अंगीकार करेगा, ऐसा पालन करेगा। उत्तर, ये अंग जैसे सम्यक दृष्टि के होते हैं वैसे मिथ्या दृष्टि के कभी भी नहीं होते। परीक्षावान तो उसका भेद जानकर पहचान लेता है, जैसे कांच या पत्थर भी कोई अन्य चमकीला होता है और हीरा भी है तो कभी कभी तो हीरे से भी वो चमकीले पत्थर की चमक ज्यादा दिखाई दे, फिर भी जो परीक्षावान है वो सच्चा कौन है हीरा किसको कहेंगे उसको सही रूप से पहचान लेता है। तो यही कहते हैं परीक्षावान तो उसका भेद जानकर पहचान लेता है, अपरीक्षक को यानी जिसको कोई परीक्षा नहीं है जो उसका पारख ही नहीं है, हम कहते हैं अपनी भाषा में जिसे सच्चे झूठे की कोई परीक्षा नहीं, अपरीक्षक किसको कहना? जो सच्चा कौन झूठा कौन इसको नहीं जान सकता उसका भेद जिसको पता नहीं होता है, ऐसे मूढ़ जीव को वे समान लगते हैं। किंतु परीक्षा द्वारा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद ज्ञात हुए बिना नहीं रह सकता है। तो परीक्षा किसको कहना? अब परीक्षा करने में तो अपना स्वानुभव मुख्य है, यानी परीक्षा किसको होगी? सही परीक्षा कौन होगा? जिसे स्वानुभव है उसकी वो परीक्षा सही होगी। सर्वज्ञ के आगम में जिस प्रकार समकीति को आत्मा का अनुभव होना कहा है उस प्रकार अपने स्व संवेदन से अनुभव हो तब उसके होने से अपनी वचन काया की प्रवृत्ति भी उसी के अनुसार होती है। ये सहज होती है, करने नहीं पड़ती। कभी कभी ये जो ऐसा उपदेश सुनकर लोग पूछते, ऐसे कोई हमें भी मिले थे कि तो ये कैसा बोलना, ऐसा नहीं बोलना तो कैसा बोलना। हमने बोला बोलने में सुधार करने से कुछ नहीं होगा, पहले में पहले मान्यता क्या है उसको नक्की करो। मान्यता सुधरे नहीं और बोलने में उसने कैसे बोलना चाहिए वो बराबर सीख लिया तो उससे कुछ नहीं, मान्यता तो वैसे ही रही। अभी तो कहते उस प्रवृत्ति के अनुसार, सॉरी ऊपर का पढ़ रही थी, उसकी प्रवृत्ति भी उसी के अनुसार होती। अपनी प्रवृत्ति अपूर्व हो जाती, अपूर्व ने पहले ऐसी नहीं थी, उसको स्वयं को तो पता ही है अपने स्वयं के परिणाम पहले कैसे होते थे और अब कैसे परिणाम उठते हैं, इसके तो उसको पता है, वो तो उसके ख्याल में है। अपनी उस प्रवृत्ति के अनुसार संकिति अन्य सम्यक दृष्टि की भी वचन काय की प्रवृत्ति पहचान लेता है। उसके अपने प्रवृत्ति में जो अंतर पड़ गया उसको पता है और उसके अनुसार अन्य के भी वचन की और काय की प्रवृत्ति के द्वारा वो पहचानता है ये मिथ्या दृष्टि है सम्यक दृष्टि। स्वयं को सम्यक्त्व होने पर वो सम्यक्त्य हुआ है, सम्यक्त्व करना, वो करना उसको लास्ट में यह है उसको वो करना। स्वयं को सम्यक्त होने पर जिस प्रकार की परिणति और प्रवृत्ति हुई, परिणति यानी पर्याय, जिस तरह से उसकी परिणाम हो गए हैं, और प्रवृत्ति में यानी आचरण में वचन की काय की जो प्रवृत्ति हुई, वैसी परिणति और प्रवृत्ति से अन्य जीव के सम्यक्त्व को भी पहचान लेता है, जिसको कहना परीक्षा। इस प्रकार परीक्षा द्वारा सम्यक्त और मिथ्यात्व का विभाग हो सकता है। इसमें अपने निर्णय पूर्वक पर का निर्णय करने की बात है, अकेले पर की नहीं, अपने निर्णय पूर्वक के महत्व की बात है। जिसको अपना ही निर्णय नहीं है उसको पर का नहीं है, फिर दूसरे को पूछ कर वो ये क्या कैसा होगा, ये सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि है। जिसको ऐसा प्रश्न पड़ता है ना ये सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि है, वो स्वयं मिथ्या दृष्टि है। हाँ, अभी सम्यक दर्शन क्या वस्तु है उसकी स्वयं को ही खबर न हो और मात्र शरीर की क्रिया से निर्णय करने जाए तो इस प्रकार संकीति नहीं पहचाना जाता। किससे पहचानना चाहता है, अभी स्वयं को पता ही नहीं सम्यक दर्शन क्या है, अपने को स्वानुभव नहीं है, और दूसरे को कैसे पहचानना चाहता है, मात्र शरीर की क्रिया से निर्णय करने जाए तो इस प्रकार संकीति नहीं पहचाना जाता। जिसको अपने में सम्यक्त हुआ वह अन्य के सम्यक्तों को भी पहचान सकता है।
देखो यहाँ पर एक बात मैं बीच में बोलना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले बात निकली थी कि ये स्व का सम्यक्त हुआ ये पहचानने का कि दूसरे को सम्यक्त हुआ कि नहीं पहचानने का, ऐसा कुछ सवाल आया था ना इधर। तो यहाँ तो दोनों ही बातों के लिए हम परीक्षा करके समझ सकते हैं, ये बात बताई, लेकिन कंडीशन क्या बताई कि स्वयं को अपने को अपना अनुभव होवे तो ही वो अन्य की परीक्षा कर सकता है। यानी हमने गुरुदेव के मुख से सुना है जो सम्यक दृष्टि होता है स्वयं, वो दूसरा सम्यक दृष्टि है कि नहीं ये अनुमान से जान सकता है, यही बात बता रहे।
हाँ, संकीति और मिथ्या दृष्टि के परिणाम समान नहीं होते। मिथ्या दृष्टि के कहीं न कहीं रागादि का उत्साह पड़ा रहता है, क्योंकि अभी राग की एकत्व बुद्धि छूटी नहीं है, भले वो आगम से समझ रहा है फिर भी अभी उसका उत्साह उसमें पड़ा है। संकीति और मिथ्या दृष्टि के परिणामों में बड़ा अंतर है, किंतु मूढ़ जीव उसे नहीं पहचान सकते। मूढ़ यानी कौन, जिसको अभी स्वानुभव नहीं हुआ है मिथ्या दृष्टि। विवेकी जीव ही परीक्षा द्वारा उसे पहचान सकते हैं। ज्ञान द्वारा अन्य जीव की वचनादि प्रवृत्ति से
विवेकी का अर्थ यहाँ सम्यक दृष्टि,
सम्यक दृष्टि जीव ही लगाए ना, विवेकी जीव ही यानी सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव ही परीक्षा के द्वारा उन्हें पहचान सकते हैं। ज्ञान द्वारा अन्य जीव की वचनादि प्रवृत्ति, वचनादि यानी वचन की काय की आदि प्रवृत्ति से उसके सम्यक्त्व का निर्णय करना वह व्यवहार है। छद्मस्थ जीव को पर के सम्यक्त्व का निर्णय करने के लिए ऐसे व्यवहार की ही शरण है। क्योंकि वो तो कुछ सर्वज्ञ है ही नहीं कि जिसकी श्रद्धा गुण की पर्याय जा नहीं सके, तो उसको किसका आश्रय लेना पड़ेगा? उस जीव की वचन की काय की क्या प्रवृत्ति हो रही है, वचन की प्रवृत्ति ने कैसे उपदेश है, उसके वचन में क्या क्या निकलता है, क्या निमित्त निमित्ताधीन उसके वचन है, निमित्त से कार्य होता है, राग करते रहो पुण्य करते करते मोक्ष होगा, क्या ऐसा उसका वचन निकलता है, उससे उसकी पहचान होती है। इसलिए ये तो व्यवहार हुआ ना, इसलिए व्यवहार की ही शरण है। किसके लिए? दूसरों का निर्णय करने के लिए, क्योंकि सम्यक तो को सीधे प्रत्यक्ष तो सर्वज्ञ जानते हैं, और यह छद्मस्थ तो अनुमान से ही अन्य के सम्यक्त्व का निर्णय करता है, और स्वयं अपने सम्यक्त्व का निर्णय तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से कर लेता है, क्योंकि उसको अपने आत्मानुभूति हुई, स्वसंवेदन हुआ, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हुई, अपूर्व ऐसा जिसको आनंद का उसने अनुभव लिया, तो उसको कहेंगे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, उससे उसके अपने सम्यक्त्व का निर्णय हो जाता है। अंतर में शुद्ध चिदानंद स्वभाव की प्रतीति रूप जो अंतरंग सम्यक भाव है, वही सम्यक दर्शन है। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन यानी क्या है? चिदानंद शुद्ध स्वभाव की प्रतीति। अब प्रतीति अलग है, ज्ञान अलग है, फिर उसको समझाए कैसे? तो समझाने के लिए वो ज्ञान के आधार से समझाना पड़ता है। कभी ऐसे भाव सहित यानी सम्यक्त्व सहित व्रत समिति गुप्ती रूप चारित्र यानी महाव्रतों की बात है। समिति पांच कल ही हमने नाम देखे थे, और तीन गुप्ती, मनोगुप्ती वचन गुप्ती और काय गुप्ती, और तप सहित 28 मूल गुणों का धारक और नग्न दिगंबर मुद्रा सहित हो, ऐसे मुनि को जीर्ण दर्शन कहा जाता है। ये 28 मूल गुण बता के फिर नग्नत्व बताने की क्या जरूरत है? क्योंकि अन्य भी कहते हमारे पास भी 28 मूल गुण है, तो नग्नत्व के बदले दूसरा कोई नाम डाले तो ऐसा नहीं चले। तो नग्न दिगंबर मुद्रा ये उनका एक रूप है, 28 मूल गुणों में से एक है। तो मुनि को जिन दर्शन कहा, क्या कहते हैं? जिन दर्शन किसको कह दिया? मुनिराज को, जिन्हें देखते ऐसा ख्याल आए जिन्हें देखते ऐसा ख्याल आए अहो ऐसा जैन दर्शन है, ऐसा जिन का मार्ग है। इसके अतिरिक्त वस्त्रादि सहित मुनि दशा माने या मनावे तो उसे जैन दर्शन की खबर नहीं। उसको अंतर में तो समय दर्शन नहीं है, और बाहर में जैन दर्शन कैसा होता है उसकी भी खबर नहीं। अहो समय दर्शन धर्म का मूल है, ऐसा जानकर हे जीवो विपरीत मार्ग का श्रद्धा छोड़ो, मार्ग की श्रद्धा छोड़ो। सम्यक दर्शन से रहित जीव वंदन पूजन करने योग्य नहीं है। ये वंदन पूजन तो सम्यक दृष्टि वंदन पूजन करने योग्य है, कौन से? मुनिराज, अन्य नहीं। चौथे पांचवे की बात यहाँ नहीं है, यहाँ मुनिराजों की अपेक्षा बात चल रही है। वस्त्रादि सहित मुनिपना हो ऐसा जैन दर्शन का मार्ग नहीं है, अतः भव्य जीवों को यह उपदेश अंगीकार करके सम्य दर्शन से रहित ऐसे पुलिंगी मिथ्यादृष्टि जीवों को वंदनादि करना योग्य नहीं है। वंदनादि में वंदन, उनका आदर सत्कार, उनके बारे में मन में कोई विनय सहित भाव होना, ये बातें सब उसमें आ गए। यह भगवान कुंदकुंदाचार्य देव की वाणी है और परम सत्य है, इससे अन्यथा विरुद्ध रूरस्व। जो वस्त्रादि सहित मुनि मार्ग मानते हैं और मनवाते हैं, अपने शिष्यों को भी वैसा ही उपदेश देते हैं, उनकी श्रद्धा विपरीत है, यानी वो स्वयं मिथ्या दृष्टि है। वे मिथ्यात्व के फल में अनंत काल निगोद में जाएंगे। ये निगोद में जाएंगे कहा तो अनंत काल यानी कितना होगा अनंत काल? मिली भाई को याद है, यहाँ लिखा ना अनंत काल निगोद में जाएंगे। तो कोई जीव निगोद में जाता है तो कितना अधिक से अधिक काल रहता है? हाँ असंख्यात पुद्गल परिवर्तन नहीं, हाँ बराबर, ढाई पुद्गल परिवर्तन निगोद का काल मैंने पूछा, एक इंद्रिय का नहीं, एक इंद्रिय में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और इतर निगोद है नहीं, क्योंकि अभी वो श्वेतांबर की मान्यता बता रहे, या कुलिंग धारण करके, या लिखा ना वस्त्रादि सहित मुनि मार्ग मानते और मनवाते, तो उसका फल क्या होगा, निगोद। अभी उसको इतर निगोद कहेंगे कि नहीं, हाँ। तो कोई जीव अधिक से अधिक उस पर्याय में रहे, बारंबार जन्म मरण करता रहे, तो अढ़ाई, हाँ, टू एंड हाफ पुद्गल परिवर्तन। और जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन बताया था वो एक इंद्रिय में, फिर उसमें निगोद में भी जाएगा, अन्य पर्याय में जाएगा, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, उसमें बारंबार एक दूसरे में फिरता रहेगा, तो वो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन होगा। तो यहाँ लिखा है अनंत काल निगोद में जाएंगे, ये अनंत काल है ना, ढाई पुद्गल परावर्तन, ढाई को अढ़ाई को, हाँ मिथ्या दृष्टि की बात है ना यहाँ पर। अतः यहाँ क्या प्रश्न पूछा, एक इंद्रिय में कोई जीव एक इंद्रिय में अधिक से अधिक काल कितना रहता है, तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। अतः यहाँ कहते हैं कि हे जीवों, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, ऐसे ही सम्यक दर्शन का उपदेश सुनकर उस दर्शन से रहित जीव वंदन योग्य नहीं है, श्रद्धा करने योग्य नहीं है, सच्चे दर्शन का स्वरूप जानकर पहचान कर वही वंदनीय है। यानी मिराज के अभ्यंतर जो कोई उनकी दशा उसको जानकर पहचान कर फिर वे वंदनीय हैं। आचार्य देव कहते हैं, कहते हैं हुआ है, कहते हैं कि पहले ऐसी सच्चा श्रद्धा तो कर, यानी अभी मुनिपना अंगीकार करना वो तो आगे की बात है, पहले में पहले मुनिपना कैसे होता है उसकी श्रद्धा तो कर, यह उपदेश अंगीकार करके श्रद्धा करने योग्य है। इस प्रकार दूसरी गाथा पूर्ण हुई, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन या परावर्तन को एक ही बात है ना, एक इंद्रिय में तो पांचों होते हैं एक इंद्रिय, और निगोद में तो मात्र निगोद होते हैं, निगोद भी एक इंद्रिय है, परंतु एक इंद्रिय कहने से पृथ्वी का एक भी है, अग्नि का एक भी है, जल का एक भी है, वायु का एक भी है, तो उसमें से किसी न किसी, कभी निगोद में, कभी अन्य में, कभी निगोद में, कभी अन्य में, बारम्बार ये लगातार निगोद की बात, ढाई पुद्गल परावर्तन, और किसी न किसी एक इंद्रियों में जन्म मरण करता रहा तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। एक भव, हाँ हो सकता है, एक भव कौन सा, वो भी क्षुद्र भव, लब्धि अपर्याप्तक का, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक एक भव किया, श्वास के 18वें भाग में मरकर फिर त्रस पर्याय में आया, हो सकता है। हम अभी तीसरी गाथा पढ़ेंगे दर्शन पाहुड़ की। अब कहते हैं अंतरंग सम्यक दर्शन बिना बाह्य चारित्र से निर्वाण नहीं होता, ये जल्दी नहीं अनंत काल है, परंतु निगोद से निकला तो अन्य केंद्रों में जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ जा सकता है।
देखो हमेशा जघन्य काल भी हो सकता है, यानी वो सभी के नसीब में नहीं होता है। अभी आपको अपनी भाषा में समझना है तो सभी लोग अंबानी नहीं होते हैं, पैसे वाले होते हैं, ख्याल में है ना, कोई विरला होता है, वैसा कोई विरला जो निगोद में जाएगा और एक भव करके वापस आ जाएगा, और हमारे जैसे मेजॉरिटी कैसे हैं जो अनेक अनंत काल तक वहां रुकेंगे, उसमें मैक्सिमम कौन होगा, तो कहते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन। ये ढाई पुद्गल परावर्तन में अनंत काल है, तो असंख्यात यानी जिसकी गणना न हो सके, ऐसे जो असंख्यात है उतने पुद्गल परावर्तन सोच नहीं पाएंगे, इतना बड़ा काल है, और ऐसे हम घूमधाम के आए हैं यहाँ पर, ऑल रिटर्न, सिद्ध शिला रिटर्न भी है हम। अब क्या करना है नक्की करो, ऐसा कहते हैं।
ना देखो अभी गाथा पढ़ेंगे या क्या कहते हैं, अंतरंग सम्यक दर्शन बिना बाह्य चारित्र से निर्वाण नहीं होता, क्योंकि लोगों को तो बाह्य चारित्र की महिमा आती है, तो व्रतादि अंगीकार करते हैं, मुनिवत सब पालन करते हैं, परंतु अंतरंग में तो कोई स्वरूप का निर्णय नहीं है और ना ही भेद ज्ञान है उनके, और राग से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव भी नहीं है। तो ऐसे कहते ऐसे बाह्य चारित्र से कुछ नहीं होगा। पढ़ेंगे, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट सनत्ति निर्वाणम सिज्जन्ति चरिय भट्टा दंसन भट्टान सिज्जन्ति दर्शन भ्रष्टा भ्रष्टा दर्शन भ्रष्टस्य नास्ति निर्वाणम सिद्धन्ति चारित्र भ्रष्टा दर्शन भ्रष्टान सिद्धन्ति। दृग भ्रष्ट है वे भ्रष्ट है उनको कभी निर्वाण ना हो, सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाण ना। वो सेकंड लाइन में भ्रष्ट करना, दृग भ्रष्ट भ्रष्ट हुआ है। देखो क्या कहते हैं, जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, भ्रष्ट होना ने उसमें गिर जाना, उसमें से च्युत हो जाना, और दर्शन भ्रष्ट से नास्ति निर्वाणम, जिसको दर्शन भी नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, उसको निर्वाण भी नहीं है। अब कहते चारित्र भ्रष्ट हो तो चले, क्या बिना चारित्र की मुक्ति होगी? वो बात नहीं है। चारित्र से भ्रष्ट हो जाए और दर्शन श्रद्धा से तो सहित ही है, तो ऐसे जीव तो कालांतर से दोबारा फिर चारित्र प्राप्त करके तो मोक्ष प्राप्त करेंगे, परंतु जो दर्शन से भी भ्रष्ट है या जिसने कभी प्राप्त ही नहीं किया है, जो भ्रष्ट हो जाते तो उसको भी हमने देखा था अर्धपुद्गल परावर्तन काल, जो अनंत काल है, इतने काल तक वो रुलेगा संसार में, जो दर्शन से भी भ्रष्ट हो गया उसकी बात है, और जिसने समय दर्शन पाया ही नहीं है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। जब तक समय दर्शन नहीं है तब तक उसको आगे का मोक्ष मार्ग खुलेगा ही नहीं।
लेकिन यहाँ तो कंपैरिजन जो हो रही है
दर्शन भ्रष्ट और चारित्र,
दर्शन भ्रष्ट और चारित्र भ्रष्टता से बन रहे, कहना ये चाहते हैं कि जो चारित्र से भ्रष्ट होता है, चारित्र से भ्रष्ट होना यानी क्या, लौकिक चारित्र की बात नहीं है वो। हाँ, ये तो कहते हैं अंतरंग में जो एक रूपता स्वरूपता जो थी वो स्थिरता थी, वो शायद इसकी कम हो जाए, कहते चिंता मत करो, उसको निर्वाण होगा, उसे निर्वाण होगा। लेकिन जो दर्शन है यानी सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है उनको कभी निर्वाण नहीं होगा, यानी दोबारा सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, ये बात बताना चाहते हैं। यानी दर्शन भ्रष्टता कब होती है कि मिथ्या दर्शन में जाने के बाद, मिथ्यात्व में होने का। तो यहाँ तो तुलना तो इन दोनों में हो रही है। कहते हैं
यानी गुणस्थान में देखना है तो छठे सातवां गुणस्थान है मुनिराज का, और जो आएगी चौथे में पांचवे में, फिर भी दोबारा वो चारित्र प्राप्त में, ऐसे भी देखते हैं मुनिराज का देहांत हो गया तो स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ तो चौथा गुणस्थान है, असंयम में आ गए, फिर दोबारा मनुष्य हो गए, फिर दोबारा संयम धारण करेंगे, वो बातें होगी। तो चारित्र भ्रष्ट होने पर भी फिर चारित्र की प्राप्ति और निर्वाण हो जाएगा, परंतु दर्शन से जो भ्रष्ट हुए हैं उनके तो मोक्ष होने का कोई सवाल नहीं, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। अभी हम अर्थ देखते हैं, फिर प्रवचन आप पढ़ना। जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट है वे भ्रष्ट है, जो दर्शन से भ्रष्ट है उनको निर्वाण नहीं होता, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि जो चारित्र भ्रष्ट है वे तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, परंतु जो दर्शन भ्रष्ट है वे सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। भावार्थ, जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट है उन्हें भ्रष्ट कहते हैं, और जो श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं है किंतु कदाचित कर्म के उदय से चारित्र भ्रष्ट हुए हैं, उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते। यानी दर्शन भ्रष्ट को ही भ्रष्ट कहा, क्योंकि जो दर्शन से भ्रष्ट है उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धान दृढ़ रहते हैं, उनके तो शीघ्र ही पुनः चारित्र का करना चारित्र का ग्रहण होता है और मोक्ष होता है। तथा दर्शन एटले श्रद्धा से भ्रष्ट होए, उसी के फिर चारित्र का ग्रहण कठिन होता है, इसलिए निर्वाण की प्राप्ति दुर्लभ होती है। प्राप्ति में जो दुर्लभता कठिनता होती है, जैसे वृक्ष की शाखा आदि कट जाए और जड़ बनी रहे तो शाखा आदि शीघ्र ही पुनः उगाएंगे। हम देखते ना बरसात में कभी कभी बड़े बड़े वृक्ष भी टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और वो सारा टूट रह जाता है ट्रंक जिसके, फिर थोड़े दिन में फिर उसमें पत्ते वगैरह शाखाएं सब उग जाती और फल लगेंगे, किंतु जड़ उखड़ जाने पर शाखा आदि कैसे होंगे। उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन जानना, यानी दर्शन हो तो ही चारित्र आदि फिर से दोबारा हो जाएंगे। अब प्रवचन पढ़ते हैं।
देखो यहाँ कह रहे हैं, दूसरी गाथा में सम्यक दर्शन की बहुत बात की और यह भी बताया कि वह सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। यानी यहाँ मूल बात क्या बताना चाहते हैं, जो सम्यक दर्शन होगा तो वह जीव निर्वाण यानी सिद्धि को प्राप्त होगा, लेकिन जो दर्शन से ही भ्रष्ट है उसे निर्वाण नहीं होगा। कब तक? जब तक वो दोबारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेगा। यानी ये सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है, इस बात को विशेष रूप से दृढ़ करा दे। अब इस तीसरी गाथा में कहते हैं कि अंतरंग में ऐसे सम्यक दर्शन बिना बाह्य चारित्र दिगंबर मुनिपना धारण कर ले तथापि उसे निर्वाण नहीं है। जो जीव दिगंबर होकर 28 मूलगुण पाले, वस्त्र का धागा भी न रखे, किंतु अंतर में जिसे सम्यक दर्शन नहीं, वह जीव दर्शन से भ्रष्ट है। यानी ये नहीं कहना चाहते कि एक दफे सम्यक दर्शन हो गया और बाद में वो भ्रष्ट हुआ। यहाँ तो कहते कि उसने सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं किया, वो दर्शन से भ्रष्ट है। वह हमने जो बताया कि दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद वो होगा, तो यहाँ तो और उसके मूल की बात कर रहे हैं कि जिसने अभी सम्यक दर्शन ही नहीं प्राप्त किया है वह जीव ही दर्शन से भ्रष्ट है। लो, वह दर्शन भ्रष्ट जीव निर्वाण को नहीं पाता। जो दर्शन भ्रष्ट है वह चारित्र भ्रष्ट भी है। जहाँ दर्शन ही नहीं वहाँ चारित्र कैसा? अकेला व्यवहार चारित्र पाले तो इससे कोई मुक्ति नहीं होती। वस्त्र सहित मुनिपना मनवावे ऐसे जीव को तो व्यवहार चारित्र का पालन भी नहीं है, वह तो अत्यंत भ्रष्ट। यानी क्या कहा? गृहित मिथ्या दृष्टि ही है, किंतु सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार चारित्र दिगंबर मुनि के समान बाहर में पाले और यह माने कि यह व्यवहार चारित्र पाल कर भगवान के पास जाकर फिर सम्यक दर्शन पाऊंगा, तो वह जीव दर्शन से भ्रष्ट है। प्रतिभा तो खुश हुई। क्या करे बेन, बात ऐसी ना, ऐसा ही जीव मानता है और वह मिथ्या, मतलब क्या कहे, द्रव्य लिंगी भी नहीं है वास्तव में। हा? क्या कह रहे हैं देखो, तो वह जीव दर्शन से भ्रष्ट है। व्यवहार चारित्र को पालते हुए भी वह जीव दर्शन से भ्रष्ट है, विराधक है। और जिस जीव को चारित्र दशा नहीं, मुनि दशा नहीं, किंतु अंतर में यथार्थ मार्ग की श्रद्धा है, शुद्धात्मा की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन वर्तता है, वह जीव आराधक है और वह अल्पकाल में चारित्र दशा अंगीकार कर सिद्धि को प्राप्त करेगा। किंतु जिसकी श्रद्धा श्रद्ध हुआ है, जिसकी श्रद्धा ही विपरीत है वह तो संसार में ही परिभ्रमण करेगा। देखो एक बात ऐसी यहाँ चर्चा निकली थी कि द्रव्यलिंगी मुनि जो होते हैं वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती नहीं होते, पंचम गुणस्थानवर्ती भी द्रव्यलिंगी मुनि नहीं होते, लेकिन यहाँ गुरुदेव बता रहे कि वो होते हैं। ये गुणस्थान प्रवेशिका में ऐसी बात आई है कि वहाँ द्रव्यलिंगी मुनि के तीन प्रकार बताए, एक बिल्कुल पहला गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि, चौथे गुणस्थानवर्ती और पंचम गुणस्थानवर्ती। उस पर किसी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन लिया, इसका उत्तर यहाँ है। देखो फिर से और ये नीचे से ये पैराग्राफ पढ़ा ना हमने, नीचे से चौथी लाइन, और जिस जीव को चारित्र दशा नहीं मुनि दशा नहीं, यानी क्या हो गया सातवां गुणस्थान नहीं, किंतु अंतर में यथार्थ मार्ग की श्रद्धा है, शुद्धात्मा की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन वर्तता है, वह जीव आराधक है, वह अल्पकाल में चारित्र दशा अंगीकार कर सिद्धि को प्राप्त करेगा, किंतु जिसकी श्रद्धा ही विपरीत है वह तो संसार में ही परिभ्रमण करेगा। यानी ये नीचे से चौथी, नीचे से तीसरी, दूसरी, ये तीन लाइन में मैं जो कहता हूँ वो उस बात का समर्थन है। ये अन्ना जी को बताना चाहिए, खुश हो जाएंगे। ऐसी कोई बात निकलती है ना तो अन्ना जी हमें कहते कि आपको कहीं ऐसी बात मिलती है तो हमको जरा बता देना। अब क्या है वो बड़े हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है शास्त्र पढ़ने को, और इतने कामों में व्यस्त रहते क्या करेंगे। जो जीव जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट होकर राग से धर्म मानता मनवाता हो, वस्त्र सहित मुनिपना मनवाता हो, उसे भ्रष्ट कहते हैं। वह जीव क्या जो, हाँ आपका प्रश्न ऐसा है कि चौथे गुणस्थानवर्ती जीव, सुनो, अगर वो बाह्य में मुनि अवस्था ली है, 28 मूल गुण यथोचित पालन करता है, लेकिन उसके एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन मुनि अवस्था बाह्य की बात नहीं है, अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होना चाहिए, यानी यहाँ बता रहे उसकी श्रद्धा तो सही है, चारित्र में कचास है, और जो हम हमेशा द्रव्यलिंगी करते हैं तो वो ऐसा जीव लिया है कि जिसके अभी पहला ही गुणस्थान है, और यहाँ जो बता रहे ना राग से धर्म मानता है और मनवाता है, ये तो यहाँ तो अभी इतना ही वाक्य लेना, बाकी आगे मत पढ़ना क्योंकि वो तो श्वेतांबर मुनि की बात करेंगे, लेकिन ये ऐसा भी ये जीव की मान्यता ही ऐसा है कि मैं 28 मूल गुण पालन करूंगा तो मुझे मोक्ष होगा, 28 मूल गुण पालन करने के परिणाम ही शुभ परिणाम है और वह करते करते मेरा कल्याण होगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मैं राग कर सकता हूँ, राग का मैं स्वामी हूँ, ऐसी ऐसे जीवों की मान्यता होती है। वेरेज चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव भी राग का कर्ता नहीं है, राग आने वाले राग का ज्ञाता है, ये इतना डिफरेंस है। चौथे गुणस्थानवर्ती जो जीव है उसके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं, एक कषाय, उनकी श्रद्धा तो सही है लेकिन अभी स्थिरता उतनी नहीं है कि जो मुनि योग्य हो। देखो फिर से ये वाक्य पढ़ेंगे, हमें घाई थोड़ी है। जिस जीव को चारित्र दशा नहीं, चारित्र दशा नहीं यानी क्या, स्वरूप में स्थिरता नहीं है, कितनी मुनि योग्य, मुनि दशा नहीं, किंतु अंतर में यथार्थ मार्ग की श्रद्धा है। यथार्थ मार्ग कौन सा है, स्वरूप में लीनता रूप, शुद्धात्मा की प्रतीति रूप यानी मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसी श्रद्धा रूप जो सम्यक दर्शन है वह वर्तता है, वह जीव आराधक है।
यानी उसके स्वानुभव हुआ है ऐसा जीव लिया,
और वह अल्पकाल में चारित्र दशा अंगीकार करके सिद्धि को प्राप्त करेगा। नहीं अभी मुनि होगा,
नहीं वो चारित्र दशा अंगीकार करेगा, बस इतनी बात। हाँ
मुनि होगा,
वो भले उसके दो चार भाव भी बाकी है, वो चारित्र दशा अंगीकार करेगा।
देखो भाई ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ प्रश्न ऐसे मतलब अनुत्तरित होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं गुरुदेव के प्रवचनों में हल मिल जाता है, उसका उत्तर आता है। अब क्या है ना, कोई एक बात लिखे तो उसको 10 सवाल पूछने वाले होते ही हैं और सबको चाहिए हमको आगम का प्रूफ दो, आगम का प्रूफ। अब ये बताएंगे ना आचार्यों का हमको ऐसा, तो कर्णन योग में से हम सिद्ध कर सकते हैं ना, जो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के जो कर्मों की जो निर्जरा होती है उसके क्या बोलते हैं कांडघात, और जो सातवें गुणस्थानवर्ती जीवों के जो कांडघात है उसमें अंतर है। चलो अभी टाइम तो हो गया। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो तालो सोवाणी मस्कर।